ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत बांग्लादेश के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जयंतो रॉय चौधरी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दो दिवसीय भारत के दौरे पर नई दिल्ली में हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बातचीत हुई, द्विपक्षीय स्तर के कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। इन समझौतों में डिजिटल और हरित भागीदारी, समुद्री सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, स्वास्थ्य और चिकित्सा, आंतरिक सहयोग, रेलवे संपर्क समेत तमाम और भी कई मुद्दे शामिल हैं। इसी विषय पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट जयंत रॉय चौधरी के साथ। जयंतो, प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो एक नई पहल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो पहल पहले से ही चल रही थी, उसका जो एक और बहुमुखी विकास हुआ है, आप भविष्य कहां पर जाते देखते हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड को लेकर?
देखिए, ये बात सत्य है कि बांग्लादेश हमारा सबसे निकटतम और सबसे शायद क्लोज हमारा नेबर है। और ये 2010 से अगर आप देखें, जब उनका वहां पे एक मिलिट्री बैक रेजिम था, उस वक्त से विकास होने लगा हमारा जो संपर्क है। और शेख हसीना के आने के बाद तो बहुत ही विकास हुआ है। बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, जिसके कारण हमने कुछ कुछ एनक्लेव्स उनको दे दिया, उन्होंने भी अपनी जमीन हमको दे दी। ट्रेड में बहुत विकास हुआ, आपको मालूम ही है। और साथ ही साथ में ये जितनी चुक्तियां हुई हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, पर सबसे बड़ी बात है कि एक महीना के अंदर शेख हसीना दो बार दिल्ली आई। और ये शेख हसीना पहला हेड ऑफ स्टेट है मोदी सरकार आने के बाद, तृतीय बार मोदी सरकार बनने के बाद पहला हेड ऑफ स्टेट जो भारतवर्ष में आए। और ये बात चाहता था दोनों ही तरफ से, बांग्लादेश भी चाहती थी कि ये हो और भारत में दिल्ली भी चाहता था कि ये हो जाए। तो शेख हसीना आए हैं और हमें आशा है इसके बाद 2026 से पहले पहले हम लोग दो जो बड़े चुक्तियां हैं उनमें हम हस्ताक्षर करेंगे। एक है गंगा पानी वितरण के बारे में, जिसका 1996 में पहले बार हुआ था और उसको फिर से हमें रिन्यू करना है 2026 में। बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रीटी है हम दोनों के लिए, दोनों देशों के लिए। गंगा भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश के लिए भी है। साथ ही साथ में जो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटी है वो है एक ट्रेड का एक ट्रीटी, क्योंकि बांग्लादेश अब और लेस डेवलप्ड कंट्रीज में से नहीं रहा, अब वो डेवलपिंग कंट्री बन गई है। तो 2026 तक जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज का जो उनको फायदा मिलता था कि बिना शुल्क का ट्रेड कर सकते थे, वो फायदा उनको बंद हो जाएगा। उसलिए उनको जरूरत है कि हर देश के साथ जिनके साथ उनका ताल्लुकात है, व्यावसायिक ताल्लुकात है, उनके साथ कुछ न कुछ वो समझौता पे आए। तो भारतवर्ष के साथ उनको एक समझौते पे आने पड़ेगा और आशा है कि बहुत जल्द ही ये समझौता बन जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ से अगर आप देखें कि शेख हसीना चीन सफर से पहले नई दिल्ली आई, ये अपने में बहुत बड़ी एक कह सकते एक अपने में एक संदेशा है कि वो चीन से ज्यादा भारतवर्ष के साथ जो संपर्क है उसको महत्व दे रही है। यद्यपि जो भी ट्रीटीज उन्होंने आज साइन की है उनमें से मिलिट्री किसी किस्म की मिलिट्री कोऑपरेशन की ट्रीटी नहीं है, परंतु भारतवर्ष सोच रही है और बांग्लादेश भी शायद सोच रही है कि किस तरह से आगे हमारा जो कोऑपरेशन है वो आगे ले जाए, ट्रेनिंग के स्फीयर में, साथ ही साथ में डिफेंस इक्विपमेंट के खरीद संपर्क में भी कितना आगे जा सके।
जयंत, तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भी देश के शासनाध्यक्ष की पहली राजकीय यात्रा है और लगभग 15 दिनों के अंदर भीतर ही ये यात्रा हुई और जो ये महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, इन समझौतों में अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 16 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। हालांकि भारत ट्रेड सरप्लस में है क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर बने बनाए सामान की आप देखें, खास करके कॉटन के कपड़ों की, तो बांग्लादेश इस मामले में काफी बड़ा एक्सपोर्टर साबित हो रहा है।
बांग्लादेश पृथ्वी का शायद इस वक्त गारमेंट्स में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उनका टक्कर अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारी जो तिरुपुर वगैरह जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं वो काफी पीछे रह गए, ये बात सत्य है। ये दुनिया का नियम है। पहले एक जमाने में यूरोप था टेक्सटाइल्स का हब, उसके बाद वो चीन में गया, चीन से अब भारत में आया, फिर अब साउथ ईस्ट एशिया में जा रहा है, बांग्लादेश, वियतनाम, कम्बोडिया में जा गया है। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है, इस पे हमें कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी, कुछ इंडस्ट्रीज पीछे रहेंगी, ये नेचुरल है। पर हम लोग उनको ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए पार्टली क्योंकि उनको कुछ कुछ चीजें हैं जिसके लिए उनको हमसे जरूरत है। जैसे वो जो गारमेंट बनाते हैं उसके लिए जो कॉटन यार्न है, या और भी किस्म के सिंथेटिक यान है वो भारत से जाती है, तो काफी हद तक जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं वो उनका एक्सपोर्ट में फीड करता है, यानी कि बांग्लादेश खुद उसको इस्तेमाल करता हो। पर जैसे भी हो वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, और हम भी उनके लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। मेरे ख्याल से चीन और भारतवर्ष बांग्लादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है और बांग्लादेश हमारे लिए पहले 10 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है।
जयंतो, एक और खास जो एमओयू हुआ है उसमें बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बारे में जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो उन्हें बताया गया कि भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के मेडिकल इलाज के लिए उन्हें ई मेडिकल वीजा की सुविधा जल्दी ही उपलब्ध कराई जाएगी, और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रंगपुर में नया दूतावास खोलने को लेकर भी सहमति हुई है। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए एक बहुत राहत की बात होगी जो यहां इलाज कराना चाहते हैं।
बिल्कुल, बांग्लादेशी नागरिक हमारे यहां आए ये तो हम चाहते ही हैं, वो ट्रेड के लिए भी आते हैं और चिकित्सा के लिए भी, और साथ ही साथ में छुट्टियां मनाने भी आते हैं। परंतु एक बीच में देखा जा रहा था कि एक तकलीफ हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने जो वीसा आउटसोर्सिंग किया है उसके तहत काफी वक्त लग रहा था उनको वीजा मिलने में, तो ये बात सबसे ज्यादा खलता था जो नागरिक यहां पे चिकित्सा करने चाहे, किसी का हार्ट अटैक हुआ वो आने चाहता है यहां पे बाईपास कराने चाहता है, उसके लिए इंतजार बहुत मायने रखता है, उसीलिए ये स्टेप ये कदम बहुत जरूरी था और भारतवर्ष और बांग्लादेश दोनों इसमें सहमत हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे उनके नागरिकों को भी राहत मिलेगा और हमारे यहां पे जो अस्पताल हैं जिनका एक बहुत बड़ा व्यापार बांग्लादेश से होता है, अगर आप देखें नोएडा में या कहीं पे भी जाके देखें जो बड़े बड़े अस्पताल हैं,
जो लिनन और कॉटन,
हाँ वो अगर आप देखें प्राइवेट अस्पताल सब में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पेशेंट सबसे ज्यादा रहते हैं
जी,
तो ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा, ये अच्छी बात है। रंगपुर का जिसने आपने बोला दूतावास, ये हमारा चौथा दूतावास होगा, हमारे ढाका में जो मुख्य दूतावास है ही है, साथ ही साथ में चिटागोंग और राजशाही में है, रंगपुर का दूतावास जो नॉर्थ बंगाल के साथ या आसाम के साथ जो हमारा कह सकते हैं जो संपर्क है बांग्लादेश का उसको और सुदृढ़ कर पाएगा आने जाने के लिए। हमने काफी हद तक यहां से बांग्लादेश जाने के लिए और बांग्लादेश से त्रिपुरा या आसाम जाने के लिए बहुत सुविधाएं किए हैं, रेल पथ में भी अब कुछ दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे अगरतला से ढाका जाने की सुविधा रहेगी, पर और भी हमें काम करने की जरूरत है, जैसे मुर्शिदाबाद से अगर आप बांग्लादेश जाएं राजशाही जाएं तो उसके लिए ब्रिज या आपको वाटरवेज की इस्तेमाल उस पर भी शायद काम होगा आगे जाके, नॉर्थ बंगाल से भी बहुत सारे कनेक्टिविटी रूट्स वगैरह बन जाएंगी। ये जरूरत है ट्रेड के लिए भी, ये जरूरत है दोनों देशों के लोगों के लिए भी ताकि वो एक दूसरे के साथ मिल सके।
बीते कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच जो रणनीतिक संबंध है वो काफी बेहतर हुए हैं, और बांग्लादेश भारत की नेबर फर्स्ट जो पॉलिसी है उसके तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है, लंबा बॉर्डर है हमारा, और ये सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान और तकनीकी, रक्षा और समुद्री मामलों के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। आने वाले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक जो संबंध है इसको कहां तक पहुंचते आप देख रहे हैं?
देखिए, बांग्लादेश एक देश है, उसका कोई एनिमी प्रकृत एनिमी नहीं है, क्योंकि भारत उसका सबसे बड़ा दोस्त है और भारत ही उसको तीनों तरफ से बॉर्डर है। बर्मा के साथ थोड़ा बहुत बॉर्डर है, बर्मा के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा ना भी हो तो भी जंग होने की कोई आसार नहीं है, परंतु बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट देश है। एक तो उसकी वो इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के सेंटर में है, इसलिए उसके साथ लिंकेजेस, ट्रेड लिंकेजेस के कारण हो या जिस भी कारण के लिए हो, हर देश चाहेगा कि उस देश के साथ उसका संपर्क रहे। चीन भी कोशिश कर रही है उसीलिए, जापान भी वहां पे काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, अमरीका इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं है पर अमरीका हर वक्त से ही कह सकते हैं बांग्लादेश में इन्वॉल्व रहा है, भारत के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसीलिए हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। हम वहां पे दो पोर्ट के काम में भी हम व्यस्त हैं, और जो रशिया जो वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बिठा रहा है उसमें भी काफी काम भारतवर्ष कर रही है। तो ये सारा जो है एनर्जी सिक्योरिटी बोले या स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका लोकेशन है उसका इस्तेमाल करे, वो उसके लिए बांग्लादेश बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जो ये अब कह सकते हैं चीन और अमेरिका में जो नया कोल्ड वॉर शुरू हुआ है उसमें भी बांग्लादेश एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मध्यमणि की रोल कह सकते हैं एक तरीके से, जिस तरह से कंबोडिया हो सकता है या बांग्लादेश है, ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टेट्स हैं और इनका इम्पोर्टेंस हर वक्त रहेगा।
आपने स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टेट की बात की, चीन की बात की, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जो बयान दिए हैं और जिस तरीके से भारत की और भारतवासियों की और भारत सरकार की तारीफ की है और अपने संबंधों की बात की है, चीन इसे कैसे लेगा?
देखिए, चीन को यह समझने पड़ेगा कि बांग्लादेश और भारतवर्ष में एक अलग संपर्क है, क्योंकि हम कह सकते हैं एक तरह के जुड़वे भाई हैं। और दूसरी बात है, बांग्लादेश का जो बनना, उसमें भारतवर्ष ने भी एक भूमिका दी है।
इसकी चर्चा की उन्होंने,
इसकी चर्चा भी उन्होंने खासतौर से की है और हर वक्त ही करते आई है। तो ये एक अलग संपर्क है, इस संपर्क को आप दूसरा किसी संपर्क के साथ आप उसका तुलना नहीं कर सकते। जिस तरह से कनाडा और अमेरिका के बीच में एक अलग संपर्क है, वो संपर्क कोई तीसरा देश नहीं है विश्व में जिसके साथ अमेरिका का उस तरह से ट्वाइनिंग है। तो ये भारत और बांग्लादेश में रहेगा, आशा है, और इसको जो भी बांग्लादेश से दोस्ती करने चाहता है, और बहुत लोग चाहते हैं, उनको समझ के आगे बढ़ने पड़ेगा कि भारत तो रहेगा पर वो भी बांग्लादेश का हिस्सेदार कर सकते हैं, उनका साथ, उनका डेवलपमेंट में वो भी हिस्सा ले सकते हैं।
लेकिन भारत को बिल्कुल दरकिनार करके, भारत से दुश्मनी करके शायद वो ऐसा करने में,
क्योंकि ये मैं जैसे कहा, ये ट्वाइनिंग है, क्योंकि आप बांग्लादेश और भारत को अलग तरीके से सोच नहीं सकते हैं। जैसे भारत अगर एक अग्रसर हो रही है विश्व की स्टेज में, साथ ही साथ में बांग्लादेश भी अग्रसर हो रही है। अगर आप देखें, बांग्लादेश का आज पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक के तहत वो कह रही है कि 2700 है डॉलर में, यूएस डॉलर में, वो भी 2022 का इसका आंकड़ा है, 2024 में और 3000 पार कर गया है बांग्लादेश। तो ये जो जिस तरह से बांग्लादेश अग्रसर हो रही है, बांग्लादेश का अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखें तो भारत से भी बेहतरीन है। तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि हमें गर्व की बात है कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो इतना जल्द से इतना ऊपर उठा। एक जमाना था, आपको ये याद होगा, जबकि अमेरिका में कहा जाता था ये बास्केट केस है। ये बात किसिंजर के नाम में लोग चलाते हैं, हेनरी किसिंजर के नाम में, पर हेनरी किसिंजर ने ये नहीं बोला था, किसी और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने बोला था, पर हेनरी किसिंजर ने इसको एंडोर्स किया था। और वहां से किसिंजर को गलत साबित करते हुए बांग्लादेश यहां पे पहुंची है कि उसे एक कहा जाता है कि आश्चर्य है कि किस तरह से ये देश इतना ऊपर उठा है, और हमें आशा है कि ये और उभरेगा और हमारे साथ साथ ही साथ एशिया में एक भूमिका पालन करेगा।
समुद्री अर्थव्यवस्था जिसे ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, उस पर भी एक आम सहमति बनी है, और स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है कि वहां से समुद्री अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिल सकता है। क्या क्या इसका डायमेंशन और आप देख रहे हैं?
देखिए, ये बात आपने सही फरमाया, क्योंकि बांग्लादेश का लिटरल जो है, जो बे ऑफ बंगाल के साथ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, इधर हमारा आंध्रा और तमिलनाडु का थोड़ा बहुत उस तरफ बर्मा है। तो ये है हमारा भौगोलिक चित्र, उसमें बांग्लादेश एकदम सेंटर में है। अगर आप देखें तो नेचुरली बांग्लादेश को साथ लेके आप जो भी, अगर ब्लू वाटर इकोनॉमी की बात करें, आप मत्स्य पालन की बात करें, या वहां से अगर आपको मिनरल्स निकालना है, खनिज निकालना है, और खनिज तो बहुत है, आपको मालूम है इंडियन ओशन जोन में, तो आपको बांग्लादेश को साथ में लेकर चलने पड़ेगा। इसलिए जो भी समझौता हुआ है उससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा। हमको तो जरूरत है ही है, क्योंकि रेयर अर्थ, रेयर मेटीरियल जो है उसमें हमारे पास बहुत कम हमारे पास है। ये ज्यादातर रेयर अर्थ कुछ कुछ देशों के पास है और कुछ कुछ कॉन्टिनेंट्स में मिला जाता है। अब पता लग रहा है हम लोगों की समुद्र के नीचे भी ये रेयर अर्थ मिलते हैं, हमको, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने दो जगह में हमने ली है, हमने, आपको मालूम ही है कि यूएन उनक्लॉस से हम लोगों ने परमिशन लेके वहां पे हम टेस्ट सी माइनिंग की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आगे जाके और भी अगर हम करें तो नेचुरली जो लिटोरल स्टेट है, जो जिसका भी उस इलाके में, जिसका और भी थोड़ा कह सकते हैं कि उनका भी एक हक होता है, उनको साथ में लेके हमें ये काम करने पड़ेगा, और उसीलिए हमने ये समझौता किया है।
जयंत राज चौधरी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपको भी।
अभी आप सुन रहे थे भारत बांग्लादेश के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जयंत रॉय चौधरी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।